पृष्ठ संख्या 10। हर नाटक के पीछे नाटककार की अपनी रंग कल्पना होती है, उसे खोजना समझना समीक्षक का दायित्व है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है नाटक की मूल प्रेरणा को अनुभव करना, क्योंकि वही उसके रूप बंधन और रंग बोध को बनाती है। नाटक पर विचार करते समय जितना जरूरी उसकी कथा वस्तु, पात्र और भाषा पर सोचना है, उतना ही आवश्यक उसके रचना नियमों, उसकी प्रदर्शन क्षमताओं, उसकी सारी रचना पद्धति को प्रभावित करने वाली रंगमंच की रूढ़ियों, प्रदर्शन के साधनों और शैलियों पर विचार करना है। तभी नाटक की निजी सत्ता और उसकी जटिलता का अनुभव हो सकता है। जिस तरह भाव पक्ष और कला पक्ष के खानों में बांटकर न्याय नहीं किया जा सकता, उसी तरह छह तत्वों, अर्थ प्रकृतियों, संधियों आदि शास्त्रीय वर्गों में बांटकर उसके रंगमंच पक्ष को एकदम भुलाकर नाटक को पढ़ना, पढ़ाना, समझना एक सशक्त विधा की हत्या करने जैसा है। रंगमंच नाटक अध्ययन का कोई एक प्रतिमान नहीं है जिसे अलग करके देखा जाए। समूचा नाटक उस संदर्भ में देखना होगा, इसीलिए कथानक पात्र भाषा को समझने की दृष्टि में ही परिवर्तन करना होगा। यह सही है कि अभी कविता या कहानी समीक्षा की तरह नाट्य समीक्षा उतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पिछले 15-20 वर्षों में लेखन, प्रदर्शन, रंग समीक्षा, दर्शक के सौंदर्य बोध में जो मोड़ आया है, उस आधार पर सोचना आवश्यक होगा कि नाटक के नए प्रतिमान क्या होंगे। अगर हम नाटक को रचना और पुनर्रचना मानते हैं, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि नाटक में जितने आवश्यक तत्व, कथानक, पात्र और संवाद हैं, उतने ही आवश्यक निर्देशक, दर्शक, अभिनेता और रंग शिल्प हैं। कथानक नाटक का मूलाधार है, इसमें कोई संदेह नहीं। भरत मुनि और अरस्तु ने उसके महत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि कथानक के बिना नाटक का कोई ढांचा खड़ा हो नहीं सकता। यह नाटककार की रुचि और दृष्टि पर निर्भर करता है कि वह कथानक कहाँ से चुनता है, इतिहास से, पुराण से या सीधे यथार्थ से, नित्य प्रति अनुभूतियों से। लेकिन इतना निश्चित है कि उपन्यास कहानी के कथानक से नाटक के कथानक का रूप एकदम भिन्न होता है। कथानक उसमें आवश्यक होते हुए भी प्रधान नहीं होता। अनेक घटनाओं का संकलन नाटकीय कथानक नहीं है। औपन्यासिक कथानक भले ही हो, क्योंकि नाटकीय कथानक पात्रों द्वारा बुना जाता है और पात्रों से उसे दर्शक मन में घटित होना होता है। इसीलिए नाटकीय कथानक के बारे में अब यही देखने की जरूरत नहीं है कि वह कितने अंकों, दृश्यों, अर्थ प्रकृतियों, संधियों में बटा हुआ है या उसमें आरंभ, विकास, अंत किस रूप में हुआ है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी है यह देखना कि कथानक एक संगठित रूप में अपना प्रभाव छोड़ पाता है या नहीं, कि कथानक और पात्र एक दूसरे की अभिव्यक्ति कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कथानक का फ्रेम तैयार है और पात्रों में उसमें फिट करने का सायास प्रयत्न किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 11। स्थितियां दोनों हो सकती हैं। एक यह कि कथानक बड़ा रोचक, प्रभावपूर्ण है, लेकिन पात्र कठपुतली की तरह निर्जीव लग रहे हैं। दूसरा यह कि कथानक ही बड़ा बनावटी, बेजान है, लेकिन पात्र व्यक्तित्व की सजीवता लिए हुए हैं। दोनों कमियां होने पर, यानी कथानक और पात्रों में परस्पर सामंजस्य न होने पर, कथानक बिखरता जाता है, पात्र घिसटते हुए लगते हैं। इसीलिए यहाँ कथानक के विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण है नाटकीय कथानक या घटना विन्यास के वैशिष्ट्य को समझना। बहुत से नाटकों में देखा जा सकता है कि नाटककार को कथानक में इतना कुछ कहने का मोह हो जाता है कि वह बहुत से क्षेत्रों से बहुत सी घटनाएं बटोर लेता है, अनेक दृश्य चुन लेता है और पात्रों की पूरी भीड़ लगा देता है। बहुत सी समस्याओं को उठाने के मोह में पात्र निरंतर बोलते कथन करते ही ज्यादा लगते हैं। यही नहीं, मुख्य और आवश्यक पात्रों के अतिरिक्त अन्य बहुत से निरर्थक निर्जीव चरित्र आते हैं, चले जाते हैं, परिचय और परिचय की समाप्ति की तरह। प्रसाद के अधिकांश नाटकों में चंद्रगुप्त अजातशत्रु में यह विषम स्थिति बराबर मिलती है, जो नाटक की निजी मांग को न पहचानने के कारण है। आधुनिक नाटकों को देखने पर एक बात और सामने आती है कि कथानक विशेष का होना न होना कोई अहम सवाल नहीं है। भुवनेश्वर के ऊसर और तांबे के कीड़े कथा विहीन नाटक हैं, लेकिन पात्र सारी स्थिति के सत्य के प्रेषक हैं। नाटक में कथा का कौतूहल नहीं, दृश्यत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। आज के बहुत से नाटक बादशाह, बेगम, गुलाम ब्रैकेट में गिरिराज किशोर ब्रैकेट क्लोज, शायद हाँ ब्रैकेट में शोभना भूटानी ब्रैकेट क्लोज, शायद ब्रैकेट में मोहन राकेश ब्रैकेट क्लोज आदि का सौंदर्य कथानक विशेष के होने में नहीं है। पात्रों की बातचीत क्रियाओं में है जो नाटक को बनाते हैं, इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है पात्र और संवाद। पात्रों के संबंध में भी आज यह दृष्टि एकदम निरर्थक है कि हम उन्हें शास्त्रीय दृष्टि से धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोदत्त आदि के खानों में बांटकर उनकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता निर्धारित करें। नाटकीय पात्र हम जैसे मानव ही हैं, उससे अलग या विशिष्ट नहीं। पात्र ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, पौराणिक भी, प्रतीक पात्र भी, लेकिन आज की कोई भी कृति, खास तौर से नाटक, जो आज के यथार्थ से, बौद्धिक प्रश्नों से और मनुष्य के सामने फैले संकट से नहीं जूझती, बेकार है। इसीलिए आवश्यक है किसी भी ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र को उसके मूल अर्थ के साथ साथ एक नए संदर्भ में रखना और उसके द्वारा आज की विडंबना को उद्घाटित करना। जैसे आषाढ़ का एक दिन मिस्टर अभिमन्यु में आज की व्यवस्था षड्यंत्र के चक्रव्यूह में फंसे राजन की त्रासदी या पहला राजा के वे प्रतीक पात्र जो दोहरी अर्थ व्यंजना देकर मानवीय यथार्थ का प्रामाणिक उद्घाटन करते हैं। पात्र के साथ अभिनेता जुड़ा हुआ है, अतः पात्र कथानक का अंग होते हुए भी व्यक्तित्व से संपन्न होगा, जिसमें उसका अंतर जगत ही ज्यादा महत्व रखता है, उसके कार्य कलाप नहीं। इसीलिए पात्रों के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उन संवादों में होती है जो नाटक के सबसे अनिवार्य तत्व कहे जाएंगे। पृष्ठ संख्या 12। कथानक को गढ़ने और बुनने में, उसके उलझाने फैलाने में संवाद ही मुख्य होते हैं। संवादों से ही सभी पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताओं का, उनकी उलझनों, द्वंद्वों, मानसिक जटिलताओं का, विचारों और सोचने के ढंग का पूरा परिचय मिलता है। यही कारण है कि मल्लिका के संवादों में भावुकता, तन्मयता है, सावित्री के संवादों में तीखापन, तेजी, हर पात्र के संवादों की गति, लय, उतार चढ़ाव, टोन में, बनावट में अंतर होगा। यद्यपि मूक नाटक भी कथानक और चरित्र को प्रकाशित करते हैं, लेकिन वह एक सीमित रूप है, उसे अगर छोड़ दें तो संवाद नाटक का अनिवार्य अंग है। मैं संवादों को इस अर्थ में ही नहीं लेता कि संवाद ही मन में होने वाले नाटक को एक बाह्य रूप, दृश्य रूप प्रदान करते हैं सही है, लेकिन नाटककार अपनी आवश्यकता और चिंतन के आधार पर उन्हें लाता है, नहीं भी लाता। कभी-कभी नाटक के बीच में ऐसे शून्य मौन पल भी आ जाते हैं जो संवाद से अधिक मूल्यवान हो जाते हैं और वही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि वह प्रभावशीलता या सौंदर्य संवादों के बीच में आने वाले मौन से ही आता है। संवाद न हो तो वह शून्य क्रिया नहीं बन सकता। संवाद रचना में ही नाटककार को गहरे अनुशासन से काम लेना पड़ता है। पहले जब नाटक में कथा तत्व प्रधान होता था और नाटककार को भारतीय आदर्श जीवन दर्शन दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते रहते थे, तब संवाद ज्यादातर पात्रों के कथन मात्र, वाद विवाद तर्क वितर्क के रूप में आते जाते थे। लेकिन अब जब घटना जाल कम और द्वंद्वात्मकता, मानसिक गुत्थियां या चारों तरफ व्याप्त व्यक्ति का दोहरापन मुख्य हो गया है, संवाद रचना भी एक कठिन काम हो गया है। यही नाटककार स्वयं एक चिंतक समीक्षक बन जाता है और यही गहरे अनुभव की आवश्यकता होती है। संवाद की सारी सुंदरता पात्र के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने में और उससे भी अधिक भाव भंगिमाओं, अभिनय, गीत, अंग, संचालन सभी की संभावना लिए होने में है। संवादों के संक्षिप्त होने या लंबे होने से उतना अंतर नहीं पड़ता जितना कि उसके पीछे व्यापक नाट्य अनुभूति होने से। मोहन राकेश ने अपने नाटकों की संवाद रचना से यह सिद्ध कर दिया है। यही एक प्रश्न उठता है भाषा का, क्योंकि संवाद रचना में भाषा का सहयोग और समझ एक मांग है। कहानी उपन्यास की भाषा की तुलना में नाटक में भाषा सर्वथा नए प्रयोग के साथ आती है। नाटक में भाषण शैली और घिसे पिटे भाषा प्रयोग, निरर्थक अलंकरण और आरोपित काव्यात्मकता अब झूठी लगने लगी है। वह भाषा प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में निभ गई, लेकिन अब वह कृत्रिम ही नहीं, विरोधी भी लगती है। नाटक की भाषा निश्चित रूप से साहित्यिक भाषा नहीं होती, यानी कृत्रिम साहित्यिकता के घेरे में बंधी घुटी नहीं। चूंकि नाटक सीधे साक्षात्कार का माध्यम है एक अनिश्चित बड़े समूह से, नई पुरानी पीढ़ियों से, विभिन्न रुचियों और पूर्वाग्रहों से उसे टकराना पड़ता है। यही नहीं, नाटक अभिनेता निर्देशक से होकर उस दर्शक वर्ग तक पहुंचता है जो अपने ही मूड में तात्कालिक प्रभाव को ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में नाट्य भाषा एक चुनौती है, वह रंगमंच की भाषा है।